मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 9 नवंबर 2016 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइव मैनेजमेंट में हम लोग कल वाले सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि कल का जो सब्जेक्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और साथ ही साथ बहुत जरूरी भी था। आप लोगों ने कल का लाइफ मैनेजमेंट मुझे उम्मीद है कि जरूर सुना होगा, और यदि नहीं सुना हो तो एक छोटी सी सलाह मेरी है कि आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट को सुनने से पहले बेहतर होगा कि आप कल के भी भाग को सुन लें, क्योंकि तभी आप आज के भाग को अच्छी तरह समझ सकेंगे और दोनों को एक दूसरे से रिलेट भी कर सकेंगे। तो मित्रों, कल मैंने ईश्वर, धर्म और पूजा का जो स्वरूप है उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी थोड़ी कुछ बातें की थी, एक जानकारी देने की कोशिश की थी। अब मैं आगे उसी को बढ़ा रहा हूं। देखिए फ्रेंड, जब हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ईश्वर कोई कर्म नहीं है, यानी कि कोई काम नहीं है। काम नहीं है इस रूप में, जैसे हम जब ईश्वर के सामने कोई प्रश्न खड़ा करते हैं या ईश्वर के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, होता है कि ईश्वर है या नहीं है। बस यही बात होती है या नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और आज तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है या नहीं है। जो मानते हैं कि है अस्ति, उसे हम कह लेते हैं आस्तिक है, ये मतलब ईश्वर को मान रहा है। जो कहता है कि नहीं है, न अस्ति, उसको हम कहते हैं कि ये नास्तिक है, इसको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि ईश्वर के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है। तो मित्रों, ईश्वर की जब बात होती है तो बात सिर्फ उसके होने या न होने पर होती है, बस। और सोचिए कि जिसके अस्तित्व के बारे में ही अभी हम सर्टेन नहीं है कि वो है या नहीं है, तो मित्रों फिर तो हम उसे एक बेहतर है कि हम व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न बनाकर लोगों पर छोड़ दें कि भाई आपको लगता है कि है तो भी अच्छी बात है, आप मानिए, और आपको लगता है कि नहीं है तो ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप जैसा ठीक समझें, जिससे आपको लाभ होता है, जो आप करना चाहते हैं वह आप करिए। क्योंकि मित्रों, ना तो जो ये कहता है कि है वो इसको प्रूफ कर सकता है कि है, आप उससे पूछिए कि भैया बताओ कि कैसे है, क्या तुमने देखा है, तो उसके पास भी कोई आधार नहीं है। और सच पूछिए तो जो कहता है कि नहीं है उसके पास भी प्रूफ करने के लिए तो कुछ नहीं है। अब ये बात अलग है कि वो कह दे कि भाई मैंने तो देखा नहीं है, जब नहीं देखा है तो वो नहीं है, तो उसके पास भी इनफैक्ट ये तर्क है, प्रूफ करने के लिए कोई आधार नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब प्रूफ ही नहीं किया जा सकता तो उसे आप व्यक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा करें। तो मित्रों, हमारे साथ जो गड़बड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि फिर आगे चलकर हमने धर्म को एक तरीके से उस ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम बना लिया। हमें ऐसा लगा कि अगर हम धर्म का आचरण करेंगे, धर्म करेंगे, तो हमें ईश्वर मिल जाएगा। और फिर हमने एक स्वर्ग और नरक जैसी जो दो लोकों की या दो स्थानों की कल्पना भी कर ली कि स्वर्ग जहां सुख ही सुख है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और नरक जहां दुख ही दुख है, सब कुछ बुरा ही बुरा है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और जो व्यक्ति धर्म का आचरण न करके अधर्म करेगा वो नरक में चला जाएगा। फिर इस पर आगे विचार बढ़ते चले गए, पुनर्जन्म और इतनी सारी योनियां और इस तरह से बातें चलने लगी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मित्रों, अब आप देखिए, कल मैं आपको बता चुका हूं कि धर्म क्या है। बेसिकली धर्म आचरण है, जो करना चाहिए, जो करने योग्य है वह धर्म है, जिसे हमारे मनु ने कहा जो धारण करने योग्य है, और जो धारण करने योग्य नहीं है यानी कि जो अकरणीय है, सीधी सी बात है वो अधर्म है, ये उन्होंने माना। दोस्तों, यहां आप धर्म और अधर्म के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा, मतलब आप अगर इससे एग्री करें या इस पर विचार कीजिएगा, एग्री मत कीजिए, आप इस पर विचार कीजिएगा। भगवान श्री राम का एक नाम है हमारे यहां पुरुषोत्तम, आप जानते हैं पुरुषोत्तम व्यक्तियों के नाम भी रखे जाते हैं और भगवान को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुष धन उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो वह पुरुषोत्तम है और ये भगवान है। देखिए इस शब्द की विलक्षणता देखिए, इस शब्द की ताकत देखिए। मतलब आपने ईश्वर को भी पुरुष तो मान लिया, यानी कि वो पुरुष ही था, पुरुष मान लिया ना, उसे आप कोई अद्भुत अलग तरह की संरचना नहीं मान रहे, अलग तरह की योनि नहीं मान रहे हैं, कोई अलग तरह का स्वरूप नहीं मान रहे हैं, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि वह भी पुरुष है, जैसे कि मैं हूं, आप हैं, इस दुनिया में और हैं, पुरुष पुरुष है वो। फर्क इतना ही है कि वह पुरुषों में उत्तम है, बेस्ट है। दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको एक खूबसूरत तथ्य का स्मरण दिलाना चाहूंगा। अगर आपने कभी गीता पढ़ी हो तो उसमें एक प्रसंग आता है कि कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं अपना विराट स्वरूप दिखाने के बाद, फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं, तुम जो मानना चाहो मुझे वो तुम मान लो, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं अच्छी बुरी जिसे जो भी तुम्हारी धारणा हो वो सब मैं हूं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि यानी ईश्वर ब्रह्म का बनाया हुआ है, यानी कि इसको बनाने वाला ईश्वर है। ठीक है, आप उसे एक रूप में मान लीजिए या प्रकृति को ही आप ईश्वर मान लीजिए, अब वो आपके ऊपर है। लेकिन कृष्ण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उस बात को हमें समझना होगा और फिर पुरुषोत्तम से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहाड़ मान लो ना, पहाड़ी मान लो, बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं पहाड़ तो हूं, लेकिन पहाड़ भी अगर हूं, पर्वत भी अगर हूं, तो पर्वतों में श्रेष्ठ हूं, यानी कि फिर मैं नगाधिराज हूं, हिमालय पर्वत हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे हाथी मान लो, मैं हाथी हूं, लेकिन अगर हाथी भी हूं तो फिर हाथियों में जो श्रेष्ठ हाथी है ऐरावत, मैं वो ऐरावत हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे पेड़ ही मान लो ना, मैं पेड़ हूं, मैं वृक्ष हूं, लेकिन फिर मैं वृक्ष में पीपल हूं, जो सर्वोत्तम वृक्ष होता है मैं वह हूं। तुम मुझे ऋतु मान लो, तुम मुझे नदी मान लो, तुम मुझे ग्रह मान लो, जो मानना है मान लो, बस उसके साथ एक बात और जोड़ो, वह है उत्तम, यानी कि जो कुछ भी मैं हूं उसका जो श्रेष्ठतम रूप हो सकता है, जो सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, वह मैं हूं। तो दोस्तों जब हम पुरुषोत्तम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो सकता है वह पुरुषोत्तम है। ये भारत की मेधा है, ये भारत का विजडम है, ये भारत की फिलॉसफी है, यानी कि व्यक्ति भी ईश्वर बन सकता है अगर वह अच्छा आचरण करे। अब देखिए उत्तम राम उत्तम कैसे बने, राम कोई जन्म से उत्तम नहीं बने, है ना। राम अगर जन्म से उत्तम होते फिर लक्ष्मण भी हमारे लिए उसी तरह से ईश्वर होते, भरत भी उसी तरह से ईश्वर होते, लेकिन वो नहीं हुए ना, उसमें राम ही क्यों हुए चारों भाइयों में, इसलिए कि वो उन्होंने अपने को सर्वोत्तम सिद्ध किया। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय मेधा ये मानती है कि अपने आचरण के द्वारा, जिसे उसने धर्म कहा, व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। चलिए वो खुद ईश्वर नहीं बनेगा लेकिन उसके नजदीक तो पहुंच जाएगा, एक जिसे देवता कहते हैं। देवता क्या है, ईश्वर से एक श्रेणी नीचे वो देवता है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, यानी कि मनुष्य में देवत्व की संभावना है, ये भारतीय मेधा ने माना। अब आप देखिए कि इस्लाम को आप देखिए, आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, ईसाई धर्म को देखिए, वो इसे थोड़ा सा दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन लेते हैं। उन्होंने क्या क्या, खुदा है, ईश्वर है, अल्लाह है ना, एक ईश्वर गॉड है, और फिर ईसा मसीह को उन्होंने क्या कहा, ईश्वर का पुत्र धरती पर आया और उसने दुनिया को जगाया, संदेश दिया दुनिया के लिए, उसने कष्ट उठाए, तो उसे उसने ईश्वर मानना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। पैगंबर साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब पैगंबर है, पैगंबर का मतलब है संदेश वाहक, वो ईश्वर का संदेश लेकर आए और उस संदेश को उन्होंने अपने लोगों को उनके हित में दिया। तो अब आप देखें कि इन सब ने जो संदेश दिए हैं वो संदेश क्या है, आप देखिए चाहे वो ईसा मसीह ने संदेश दिए, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब ने संदेश दिए, वो आचरण ही है कि ये करो। और उन्हीं संदेश के संकलन को हम क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ कहते हैं। कुरान धर्म ग्रंथ है, बाइबल धर्म ग्रंथ है, गीता धर्म ग्रंथ है, रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है। और हमारे जो गुरु नानक साहब ने भी ऐसे ही कथनों को इकट्ठा करके आदि ग्रंथ, वो धर्म ग्रंथ है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो धर्म ग्रंथ है, ये कह क्या रहे हैं? केवल ये कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, हमारे आचरण को कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन हम जिए, यही बता रहे हैं। और जो कुछ वो बता रहे हैं वो धर्म के अंग बन जा रहे हैं। तो मित्रों, यह है धर्म का स्वरूप, जिसे मैंने कहा कि जो सीधे सीधे आचरण से जुड़ा हुआ है। और जब हम इस तरह के आचरण को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो बस सीधी सी बात है कि फिर हम पुरुष से धीरे धीरे एक उत्तम पुरुष बनने की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर आप यूं कह लीजिए कि हम ईश्वरत्व के नजदीक पहुंचने लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे अंदर ही ईश्वरत्व का अवतरण होने लगता है, या कि ईश्वर का जो तत्व है हमारे अंदर ही आने लगता है। इसे आप जिस रूप में भी चाहें समझ सकते हैं। तो मित्रों, यहां मैंने ईश्वर और धर्म का जो आपस में जो संबंध बताया है, बस थोड़ी सी उस पर आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा। और अब जो पूजा वाली बात है, जो एक तरीके से उन स्टूडेंट कि सबसे बड़ी शंका थी या जिस द्वंद में थे, उसके बारे में मैं अब आपसे कल बातें करूंगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का हमारा यह लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।